राम यह प्रवचन परम हृदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 10 सितंबर 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे भीनाशर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अपने साधन में बाधा होती हो, व्यवहार में बाधा होती हो, ऐसे उलझन होती हो, ऐसा प्रश्न किया जाए तो बढ़िया है। कहेगा आगे पराकृत भी देखा सुमित राम चरण दिन रेखा को रेखा का चिंतन क्यों करता था। गीत की दृष्टि तेज होती है। संपाति ने कहा है कि मैं यहाँ देखता हूँ गीता में अशोक वाटिका में सीता बैठी है, मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। तो गीत की दृष्टि तेज होती है, इस वास्ते भगवान की रेखाओं का चिंतन करता है। नहीं तो रेखा क्या पता लगे, ऐसा आप सामना रेखा सबको थोड़ी दिखेगी। तेज दृष्टि वाले देखता है, इस वास्ते वो रेखा का चिंतन करता है। रेखा में बड़े सुंदर सुंदर चिंतन होते हैं, भगवान के चिन्ह होते हैं। ये कहते हैं आज सुबह गुरु के विषय में बातें आपने बताई, विवेक ही गुरु है, कृपया ठीक समझे और खुलासा करने कृपा करें। देखो आपको कोई आदर की दृष्टि से देखे और कोई निरादर की दृष्टि से देखे तो आप पर असर नहीं पड़ता है क्या? कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपकी निंदा करे तो आपको ज्ञान होता है ना? ये विवेक ज्ञान है ये, पर विवेक का उपयोग करने से विवेक बढ़ता है। विवेक को ठीक तरह काम लेने से विवेक बढ़ता है। तो विवेक कैसे बढ़ता है? विवेक तो आप में सब में है, पशु पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, पर उनके निर्वाह मात्र का है। मनुष्यों में विवेक बहुत विचित्र है। जैसे अपने को कोई गाली दे तो बुरी लगती है, तो इस ये तो है गाली लेना, ये तो है भोग। हम सुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये तो भोग है। तो भोग से मोक्ष नहीं होता, भोग से बंधन होता है। गाली दे वो बुरा लगता है, तो अपने शिक्षा देनी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। यह है विवेक। ये विवेक को काम लेना हुआ। कोई हमारी चोरी कर ले तो हम अच्छा नहीं लगता, तो हम चोरी न करें किसी की। आपके कोई लाभ करा दे तो आपको अच्छा लगता है, तो औरों के भी ऐसा व्यापार आदि बजाकर लाभ करा दो। मानो अपने ऊपर देख करके विचार करो तो आप सुखी दुखी होते हो, ये तो है भोग। और उसी सुखी दुखी को समझ करके ऐसा आचरण करने से मैं सुखी होता हूँ, ऐसा करने से दुखी होता हूँ, तो दूसरों को सुखी हो ऐसा आचरण करो, किसी को दुख हो ऐसा आचरण मत करो। ये है विवेक। तो विवेक जो है, विवेक का सदुपयोग करना है। कैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का सदुपयोग करने से कल्याण होता है, और दुरुपयोग करने से नुकसान होता है, पतन होता है। विवेक इतना भगवान ने अधिक दिया है कि उस थोड़े से भाग से भी अपना कल्याण हो जाए, पर उस विवेक का दुरुपयोग करते हैं। इनकम टैक्स की चोरी और सेल टैक्स की चोरी करने में आपकी बुद्धि काम करती है कि नहीं? अब ये ऊंधी बुद्धि काम करती है स्वार्थ में, जो ही दूसरे के हित करने में बुद्धि काम करने लग जाएगी तो निहाल हो जाओ। संसार समुद्र है, आपको तैरना आता होगा, जल में खड़े रह कर नीचे यूं करो पानी को यूं तो डूब जाओगे, और यूं यूं करोगे तो उतर जाओगे। लातों से हाथों से पानी को मारता रहे तो पार हो जाएगा, और लेता रहे डूब जाएगा। ये संसार में मैं लेता हूं, मैं ले लूं, दिखते तो अच्छा है, मैं डूबने का रास्ता है ये, और लातों से हाथों से पार करता जाए तो पार हो जाएगा। मन दूसरों का हित कैसे हो? ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। गीता कहती है प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पर पीड़ा तो दे देते हैं, पर हित नहीं करते। स्वार्थ बुद्धि इतनी आ गई है कि जिसमें विवेक का निरादर कर रहे हैं, विवेक को अपने लिए ले रहे हैं, ये अपने लिए ले रही है, दूसरों के लिए दे तो निहाल हो जाए। ऐसे हर एक विषय में जितना विचार है, स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये विवेक भगवान ने दिया है, सबको दिया है जिसे कल्याण हो जाए, पर विवेक का उपयोग करना आता नहीं है। वो विवेक काम में लाने की बात सत्संग में मिलती है। सत्संग ये पाठशाला है, पाठशाला में हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम करो घर में, ये पढ़ाई करने का है स्थान। इस वास्ते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानते नहीं है। इसी को आसुर संपत्ति कहा है, देवो विस्तर से प्रोक्त आसुरम पार्थ ने सुनु। 16वें अध्याय में आसुर संपत्ति के लिए भगवान कहते हैं, देवी संपत्ति तो मैंने विस्तार से कही है, इसमें भी 26 लक्षण बताए हैं। 13वें अध्याय में 14वें में पहले कई बार आई गुणातीत के लक्षण है, स्थिरपज्ञ के लक्षण है, योगी के लक्षण है, ऐसे भक्तों के लक्षण है। ये देवी संपत्ति को तो कही है, आसुर संपत्ति मेरे से सुनो, ऐसा कह करके आरंभ किया है कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा। आसुर प्रकृति वाले लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? कि अपनी बुद्धि से करते हैं, अपनी बुद्धि से। इस वास्ते उपसंहार में 16वें अध्याय में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। कर्तव्य और अकर्तव्य शास्त्र के सामने मत रखो। यह शास्त्र विधि मुझसे वर्तते काम करता, शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना करता है, उतना सिद्धि मांगती न सुख न परम गति, न सिद्धि होगी न सुख हो न परम गति। आचरण करो, अपने विवेक का उपयोग हो गया। तो विवेक शक्ति तो सब में है, वो विवेक शक्ति जागृत करनी है। जागृत में भी विवेक जागृत करना है। जैसे आप अभी कोई जोर देना हो तो जोर आप फटफट जोर दे देते हो, जोर लगाते हो धड़ा। अब जोर आप लगाते हो तो किसे सीखेगा? अमुक ने मेरे को सिखाया। तो आपसे पूछो, इतने बैठे हैं, कोई आदमी बता सकता है कि ये अंक गुरुजी ने दिए थे, इन अंकों पर हमने जोर सीखी है, किसी को है याद? पहले पहल जोर सीखते समय गुरुजी ने कौन से अंक रखे गए और उनसे आपने सीखी है? कोई नहीं याद है, बताओ, कोई बताओ, किसको याद नहीं है? क्या जोड़ याद नहीं है? जोड़ तो याद है, तो भी अंक थोड़ा ही मतलब है, मतलब तो वह तत्व से था, अंकों से मतलब नहीं है, वो अटकल बता दी। अब आप गुणा करते हो तो गुण हो जाए स्थान गुणा और भंज गुणा, दो तरह से गुणा होता है, तो गुणा करने की अटकल आपको बता दी, पर जिस गुणा के अंक दिए थे वे अंक किसी को याद है? तो क्या वे अंक आप में रहते हुए विवेक को जागृत किया अंका ने? अंकों से मतलब नहीं था। ऐसे मैं बात कहता हूँ आपके, तो हमें बहुत अच्छी बात मिली, वो बात आपकी है, मुझे दिग्दर्शन कर दिया, जागृत कर दी बात को, तो उस ज्ञान को लेना है, गुणा करने का सीखना है, गुण सीखते हैं, एक अंक पहले दिया उसको ऐसे लिख दिया, फिर एक सौ ऐसे लिख दिया, फिर इसे जोड़ लगा दी, बस मतलब आ गया। तो तत्व सीखने के लिए ये बातें हैं, इन बातों को आप काम में लाकर देखो तो लाभ हो जाएगा। अब सीख तो लिया, काम में नहीं लाते तो कैसे होगा? इस वास्ते मैंने कहा है कि रसोई बनाना आता है पर बनाता नहीं तो कैसे बनेगी, और रसोई बनाना आता नहीं और बनाना शुरू कर देगा तो कुछ न कुछ बनेगा, बढ़िया नहीं बनेगी। ऐसे काम आप में सुन तो ली, सीख ली, अब काम में लाओ तो रसोई बन जाएगी बढ़िया, काम में नहीं लाओ तो सुन ली, सीख तो लो गया, परंतु काम में लिए बिना काम नहीं बनेगा, उनको काम में लाओ तो कल्याण हो जाएगा। तो ये विवेक शक्ति भगवान ने दी है, मनुष्य जन्म दिया है तो विवेक शक्ति भी दी है, और समय भी दिया है, और सामर्थ्य भी दी है, और सामग्री भी दी है। आपके जो पास सामग्री उतनी से कल्याण हो जाएगा, आपको समय मिला है उसमें थोड़े में कल्याण हो जाएगा, आपको समझ दी है उस समझ का ठीक उपयोग कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण करने की सामग्री भगवान ने दी है, अब गुरु है वो क्या करता है, उस सामग्री से चेता देता है कि ऐसे ऐसे करो, वो अटकल बता देता है। अब बता नहीं उनसे कर को आप उद्धार हो जाएगा, तो उद्धार करने का विवेक सब में है, गुरु बिना जागृत नहीं होता ऐसी बात है, परंतु विचार करोगे लालसा जोरदार हो जाएगी तो उसे कल्याण हो जाएगा। सुबह बात मैंने कही, उसमें सार बात कही थी, सुन लेना सभी। कल्याण हो नहीं रहा है, उद्धार नहीं हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसमें हम तो समझते हैं कि हम वो विद्या नहीं जानते, वो उपाय नहीं जानते, कोई बताने वाला नहीं मिला, ऐसी बात होती है। परंतु खास करके अपनी जोरदार इच्छा नहीं है, मेरे खुद की बीती हुई बात है, मेरे मन में आता था कोई बता दे तो हम यूं यूं कर लें, वो साधन करें, कोई बताने वाला मिल जावे, मालूम होता है बिताने वाला नहीं है। तो ये मानता हूं आप लोगों यही दशा होती होगा, हमारी बीती हुई बात है, और बताने वाले मिले उनके अनुसार अपने चेष्टा भी मैंने की, तो वास्तव में बताने की जरूरत नहीं है, विवेक भगवान ने दिया है पर हमारे काम नहीं आया। वो जैसे गाय बीमार हो जाए तो काली मिर्च घी देना चाहिए, काली मिर्च तो दे दी, घी दिया नहीं, गाय में है ही घी, तो गाय में रहने वाला घी काम नहीं आता, वो ही घर जाकर के निकाल दे दे वो काम आ जाता है। ऐसे ही आपका ही विवेक, वे संत बता देते हैं कि ये बात है, तो है वो आपका ही विवेक, स्वरूप भी आपका ही, अरे आपका ही कल्याण करेगा, परंतु गाय में रहता हुआ गाय का घी गाय का काम नहीं आता, ऐसे आप में रहता हुआ भी विवेक आपके काम में नहीं आता, आपका कल्याण भी आप में मौजूद है, जिससे निवृत्ति होनी चाहिए वो निवृत्ति आप से आप होती है, और जिसकी प्राप्ति होनी चाहिए वो नित्य ही प्राप्त है सबको। संसार का राग मिटाना चाहिए, निवृत्ति करनी चाहिए, तो निवृत्त हो रहा है ना, बाल से जवान हो गए, जवान बूढ़े, निवृत्ति निवृत्ति हो रही है, संसार की तो सदा निवृत्ति हो रही है, निवृत्ति हो रही है, उसे निवृत्ति आप मान लो निहाल हो जाओगे, और मैं हूं ये सत्ता आपकी है, सत्ता में अपने सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित हो जाओ। तो स्व तो आपका स्वरूप है, अब उसमें दूसरे स्थित करेगा कोई? दीर्घ गाते तो भाई सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं में स्थित रहोगे तो सुख दुख में सम हो जाओगे, और आने वाले सुख दुख में स्थित हो तो दुखी सुखी होते रहोगे। कितनी सीधी सरल बात है। मानो आने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होगा तो उम्र बीत जाएगी और फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। आदेवाणी आने जाने वाले को समझो आगमा पाइनो अनित्य, भगवान कहते आने जाने वाले अनित्य है, तो आने जाने वाले अरे अनित्य है, इसमें क्या सुख क्या दुखी हो, सुखी दुखी मत हो, स्वस्थ है स्वयं स्थित हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सहज सुख राशि है। तो स्वरूप तो आप कैसा है ही, परंतु आने वाले सुख दुख में आप फंस जाते हो, स्वास्थ्य ध्यान नहीं होता। आने जाने दुख तो आने जाने वाले क्या आदर करे, कुत्ता आ गया निकाल दो घर से, मैं कोई बच्चा आ गया ठीक है आदर सत्कार कर दो, आने जाने वाले अपना नहीं है। अगर ये इतनी चीज सीख लो आप तो विवेक आप में मौजूद है, निवृत्ति होने वाली की तो निवृत्ति हो ही रही है, प्राप्त करना चाहो वो प्राप्त सदा ही है, नित्य निरंतर प्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना है, या निवृत्ति की निवृत्ति नहीं करना, निवृत्त हो रहा है या प्राप्त हो ही रहा है। कितनी सीधी बात है, सम दुख सुख स्वस्थ है। अब स्वयं में भी आप स्थित नहीं हो तो क्या किया जाए? और मैंने कहा कि भाई जिसको आप नाशवान समझते हो, असत समझे, उसका त्याग करो। कितनी विलक्षण बात है, जो असत दिख है उसकी सत करने की, वो ठहरे रह जाए बन जाए, इसका मतलब कि शरीर ठहरने वाला नहीं, निरोगता ठहरने वाला नहीं, जवानी ठहरने वाला नहीं, अच्छे पुरुषों का संयोग ठहरने वाला नहीं, दुष्टों का संयोग ठहरने वाला नहीं, बीमारी भी ठहरने वाली नहीं। तो लाभ लेना चाहिए अच्छा संग मिले तो, और जो बीमारी आदि वो ठहरने वाली नहीं, पाप भुगत कर चली जाएगी, इसमें क्या राजी क्या नाराज हो। ये विवेक सबको है, आप थोड़ा विवेक का काम लो तो बढ़ जाएगा विवेक, इस बात विवेक ठीक समझ में आ जाएगा। नारायण 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 विहंगम मार्ग तत्व शीघ्र शीघ्र प्राप्त होता है। दर्शन जो विहंगम मार्ग है, आकाश में चलता है ना विहंग, विहंगना पक्षी का विहग विहंग विहंगम तुरग तुरंग तुरंगम भुजग भुजंग भुजंगम, ये शब्द मानते हैं। तो विहग ना विहंगम मार्ग में उड़कर चले जाना, बद्रीनाथ बीते धीरे धीरे जावे, आदमी को कितना समय लगे, अगर उड़कर जावे तो बहुत जल्दी चल जाए। ऐसे ही दूसरे का हित करना और परमात्मा को याद रखना, सुनते ही भगवान को याद रखे, भगवान भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक नाम जपना शुरू कर दे तो आपका रास्ता बहुत कट जाएगा। उसमें जो सत्संग के द्वारा बताया जाता है उस बात को पकड़ लो तो वो विहंगम मार्ग है। अब ध्यान देकर सुने, एक बात बताता हूँ, मैंने जैसे सुना है पुस्तकों में पढ़ा है उसके अनुसार मैं कहता हूं, आप सोचो बात समझ में आ जाएगी। ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश स्वतः है, प्रकाश एक नंबर में दिखता है, दो नंबर में जनता दिखती है, ख्याल नहीं किया जो मनुष्य दिखते हैं, जनता दिखती है, पंडाल दिखता है, थम्भे दिखते हैं, पर थम्बे दिखते हैं दो नंबर में, एक नंबर में दिखता है प्रकाश, उस प्रकाश के अंतर्गत थम्बे दिखते हैं, ध्यान आएगा ना। तो पहले प्रकाश दिखता है, पीछे थम्बा दिखता है। ऐसे हरेक विषय को आप जानो तो ज्ञान पहले होता है, तो ज्ञान पहले है, एक तो ज्ञान एक है, इसको सच्चिदानंद कहते हैं। सत अर्चित जो है वो तो सत, और जो ज्ञान है इसको चित, और इसमें आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, इसका नाम आनंद। ये सच्चिदानंद है। जितने ये है दिखता है तो संसार है। कौन ऐसा कह सकता है कि संसार है, शरीर है, इसका पता नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? ये सत्ता दिखती है ना, ये सत्ता संसार की नहीं है, प्रत्येक क्षण में बदल रहा है। उस सत्ता कहाँ है? सत्ता हो तो आप छोटे से थे, इतने बड़े हो गए आप। हम अपने माँ के जन्म में जब ऐसे थे क्या? तो उसी सत्ता कहाँ? ये तो बदलता है, नाश हो रहा है। तो सत्ता इसकी नहीं है, सत्ता वो परमात्मा की है, वो सत है। और उसका जो ज्ञान है ये चेतन है, और उसमें निर्विकार परम शांति, ये सच्चिदानंद परमात्मा सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। अगर इसको मान लो तो ये विहंगम मार्ग है। कि मानना कैसे? तो माने कि भूख होने से मानना होता है। भूख बिना भोजन बढ़िया से बढ़िया भी ना रुचता है ना पचता है। ऐसे कल्याण की इच्छा के बिना मेरी बात है तो सुन ली, वाह सुन ली। अब भूख हो मेरा कल्याण कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? अरे बातचीत ऐसे जड़ जैसे सीप मोती बन जाए, सीप में पानी पड़ते ही जू बाजूरी अद्भुत मिलगी, बड़ी सीधी है, सब जगह है वो परमात्मा का ही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्ता से ये सत्य दिखता है, जो जिसकी सत्ता से दिखता है उसमें ही रहना है, इसमें नहीं रहना है। ये तो बिगड़ रहा है, मर रहा है, इसका क्या मोह करें? ये तो मिट जाएगा। अरे सत्ता मिटेगी नहीं, वो रहेगी। उस सत्ता में स्थित हो जाना, ये विहंगम मार्ग है। अभी 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 प्रगति है। तो ये प्रकाश स्थिर है, प्रकाश नित्य निरंतर है। ऐसे ज्ञान और सत्ता ये निरंतर है, और इसमें दुख संताप रही नहीं, आनंद है। ये सच्चिदानंद सबको स्वतः प्राप्त है, किसी को भी अप्राप्त नहीं है। परंतु इधर आदर नहीं करके नाशवान का आदर कर रहे हैं, नाशवान को महत्ता दे रहे हैं, रुपया पैसों को, भोगों को, संयोग को। देखो आपका संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है ना। आप मिल गए, संयोग हो गया, चले गए, वियोग हो गया, ठीक है ना? समझ में आता है ना ये? तो संयोग वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। उस वियोग को स्वीकार कर लो, शरीर संसार सबसे वियोग है, ये वियोग को स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे। ये विहंगम मार्ग है। पहले आपका हमारा परिचय नहीं था, ध्यान देकर सुनना। आपका हमारा पहले वियोग था, मानो जानते ही नहीं थे, ना हम आप जानते मेरे को, ना मैं आपको जानता। अपना आपका वियोग था, और फिर मिल गए तो संयोग हो गया, और अंत में वियोग होगा। संयोग निरंतर रहेगा नहीं, वियोग ही निरंतर रहेगा। क्या इसमें संदेह है? आपका हमारा वियोग ही रहेगा अंत में, संयोग नहीं रहेगा। तो संयोग अनित्य है, संसार मात्र का संयोग अनित्य है, और वियोग नित्य है। उस वियोग को स्वीकार अभी कर लो, अभी कल्याण है। ये विहंगम मार्ग है। शंका हो इसको बोलो, ये असत दिखता हो तो बोलो, इसमें शंका हो संदेह हो करो बुलाओ सामने। अरे ये बात आप जानते हो कि संयोग और वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है, जैसे संसार का वियोग नित्य है ऐसे परमात्मा का संग योग नित्य है। उसका योग ही नित्य है, वियोग है ही नहीं, होगा ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और कि संयोग है नहीं, रहेगा नहीं, हो सकता नहीं, रहेगा नहीं, है नहीं, हुआ नहीं, और होगा नहीं, इसमें कोई शंका हो पूछो आप तो। संसार की निवृत्ति परमात्मा प्राप्ति स्वतः है, मोक्ष का स्वरूप मूला विद्या से निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप वेदांति होगा। तो इसकी निवृत्ति निरंतर है, कभी आपके साथ रह सकता ही नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। और परमात्मा है जो, वो आपसे अलग हो सकता नहीं, होगा नहीं, है नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अब इसमें शंका करो, अब आप रहती थी पढ़े लिखे वेदांत जानने वाला करो, सही बात है, क्या शंका करे इसमें? आपने पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, आपने सुना, मैंने सुनाया, सच्ची बात है, शंका हो तो पूछ लो। सीधी बात, शंका है तो नहीं मैं कि वियोग ही नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, समतुम योग नित्य, समतुम योग उच्चते, और दुख संयोग वियोग योग संगीता, दुखों के संयोग का वियोग नाम योग है, समता का नाम योग है, संसार वियोग और समता में स्थिति हुई योग होगी, गीता का योग है, ये गीता का असली योग है, योग शास्त्र का है, योग है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। बोलो इसमें देरी का क्या काम है, ये व्यंग मार्ग है, नहीं तो पढ़ो सुनो श्रवण करो मनन करो निध्यास करो ध्यान करो समाधि करो तो करो, ये है पैदल मार्ग, मार्ग वहीं पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा, ये पहुंच गया ठेठ सठ पहुंच गया, विहंग में देरी लगती, इसमें देरी नहीं लगती। छोड़ने वाले तो मिट रहा है, छूट रहा है, अप्राप्त होने वाला नित्य निरंतर प्राप्त है, वो कभी अप्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और संसार का संबंध कभी रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, और क्या रहा बाकी, मूला विद्या से निवृत्ति अर्पण बंद की प्राप्ति, और क्या है बताओ लखना पड़ेगा, इसमें संदेह पूछो। ये व्यंगम मार्ग है, जब संदेह नहीं धारण करो ठीक है, ये मिटता है तो मिटेगा, रख सकते नहीं आप कभी इनका संयोग, कोई महाराज कंस ने कितना विचार किया कि मैं मरू नहीं मरू नहीं, बोध किया बालकों ने हत्या करी, कोई काम किया पर मर गया, कितने कितने वरदान ले लिए, मरो ही नहीं फिर मर गया, ये तो वियोग तो होने वाला है, आप कितना ही उद्योग करो रह सकते नहीं, और परमात्मा सदा नित्य कण कण में व्याप्त है, उसका वियोग कर सकता नहीं कोई, विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, अविनाशी का विनाश कोई कर सकता ही नहीं, होगा ही नहीं कभी, ऐसा उसका वियोग हो ही नहीं सकता, वो नित्य प्राप्त है। अच्छा अपने आप पक्का हो जाओ, कहते अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, मैं कहूँ लगन लगाओ और प्राप्त नहीं होता है, ऐसे आप हिम्मत मत मारो। सज्जनों मेरी बात मानो, अंधाधा आप मानो, आप इसको कठिन मत मानो, अभी से आप विचार करो कि है और ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब ये मिट जाए तो क्या नई बात हो गई, मिटने वाला मिट जाए तो नई बात क्या हुई, मरने वाला ही मरेगा, जाने वाला ही जाएगा, धन जाने वाला ही जाएगा, शरीर जाने वाला ही जाएगा, उम्र जाने वाली जाएगी, इसमें नई बात क्या होगी, क्या रोगे इसके लिए, तो इनको मोह छोड़ देगा तो जाने वाला है भाई, अब मारवाड़ी का तो आशा ढूंढने वाली है, अतसा ढूंढने वाली नहीं, अतसा ढूंढ जाएगी, रहेगी नहीं, जब जाने वाला ही मुझे बचा रहा, अब इनमें कोई शंका हो संदेह हो कठिनता हो कोई पसीना आता हो तो बताओ कि भाई इसमें बड़ा जोर पड़ता है, कठिन है, कठिनता है, कि व्यंगम मार्ग है, अब मार्ग तो व्यंगम, कोई जाना चाहे तब तो, अब जाना ही नहीं चाहे उसे क्या करे, वो उपाय किसी के पास नहीं है, आप जाना ही नहीं चाहते, अगर चाहते हो तो बताओ कठिनता बताओ, उसमें दुर्लभता बताओ, सीधी बात है, बहुत बातें ऐसी, बहुत सी बातें ऐसी है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से सुनी है, देखा है, मेरे को अच्छी लगी है, वही मैं सुनाता हूं। देखो हर एक आदमी अपनी इज्जत चाहता है कि नहीं, तो मैं सुनाता हूँ, मेरी इज्जत नहीं चाहता हूँ क्या, तो मैं कैसा हुई हूँ सुनाऊ, बढ़िया बढ़िया बात समझे, मैं काम में लू चाहे न लू तो वह बात अलग है, मैंने सुनाता हूँ बढ़िया ही सुनाऊंगा, घटिया क्यों सुनाऊंगा, क्या मेरी फजीती करनी है मेरे को, तो बढ़िया बढ़िया सुनाता हूँ, आप काम में ले देखो बताओ, सीधी सीधी मार्ग है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति निवृत्ति करनी चाहिए। मूल विद्या सहित निवृत्ति निवृत्ति हो रही है निरंतर, और परमानंद की प्राप्ति हो रही है निरंतर, और मोक्ष का स्वरूप होता है। क्या संसार की निवृत्ति नहीं होती है? क्या परमानंद की प्राप्ति नहीं है? अब सुन में सीख लो क्या तो दोगे, परंतु है एक परमानंद हूं, हूं है, ओ हूं 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 है, हूं है, बस हूं है में हो गया, बस ठीक हो गया। हूं है, हूं है मैं से, मैं छोटा हूं है हो गया, है मैं हूं। स्थिति क्या देने लगी बताओ, क्या कठिन होगी? हूं की जगह है, हूं तो मैं होने से हूं है, मैं नहीं तो है, तू है, यह है, वह है ही है, या मैं हूं, बस मैं को छोटा है, तो तू है, यह है, मैं है, मैं ही है, बस। अहम ब्रह्मास्मि का तत्व है, महावाक्य का निचोड़ है ये, महावाक्य तो बड़ा है। बोलो फर्क है क्या? है। अब हूं बंट और है को मिला और बस क्यों फोड़ा दे वो भाई, मैं नहीं यार है बस इतनी बात है, मैं नहीं है, अरे है बोलो तो मैं नहीं हूं, जो हूं कर हूं नहीं रहेगा, है ही रहेगा, ये है में स्थिति है। महाभाग्य तो बड़ा है, बोलो फर्क है क्या? है। अब हूं बंट और है को मिला और बस क्यों फोड़ा दे वो भाई, मैं नहीं यार है बस इतनी बात है, मैं नहीं है, अरे है बोलो तो मैं नहीं हूं, जो हूं कर हूं नहीं रहेगा, है ही रहेगा, ये है में स्थिति है, स्वतः स्थिति है मैं। है से कोई अलग हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है से अलग हो जाए, और मैं के साथ कोई रह सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं मेरे साथ रह जाएगा। अरे अनुभव बताया कि सुषुप्ति में आप मैं के साथ नहीं रहते हो, तो आप मैं से रहित हो, ये आपको अनुभव है। अब आपके अनुभव आप आदर नहीं करे तो क्या करें बताओ, ये व्यंगम मार्ग है। क्या देरी लगे बताओ? वेदांत का सार है, वेदांत के ग्रंथों का सार, निष्कर्ष निचोड़ ये बात है। नारायण नारायण नारायण, जिसका रूप हुआ वरदान दोनों ही बदलता जा रहा है, इसे भगवान से हमें भी अच्छा धैर्य। अनुरूप खराब है, जब देखो दहेज की प्रथा है और वो नहीं,
कपिल भगवान ने कहा,
कपिल भगवान ने कहा कि नरक स्वर्ग यहाँ ही है, तो ऐसे वहाँ कहा है, ऐसा लोग कहते हैं, कपिल महाराज कहते हैं कि नरक स्वर्ग यहाँ ही है, ऐसा लोग कहा करते हैं। थोड़े आप थोड़े कहते कि मैं कहता हूँ, पढ़ो भागवत तो पढ़ दो, अभी महाराज भागवत श्लोक बताया मेरे को, ये प्रत्यक्ष थे लोग कहते हैं ऐसा, तो लोग तो कहते ही हैं, मैंने और जगह नहीं है ये तो नहीं कहा उसमें भी, तो यहाँ सुख है और स्वर्ग है, यहाँ दुख है नरक है, बस इसी नमूना तो यहाँ है। उपलक्षण बताया, स्वबोध तत्व सती श्वेतर बोध तत्व उपलक्षण तत्व बता दिया, ये है बात। अब एक बात बताऊं, जो दहेज की बात पूछी है, दहेज की बात है जिसके कारण आप दहेज प्रथा को तो मिटाते नहीं, छोरियों का गर्भ गिरेगा, छोरियों का नाश करते हो, बड़ी भारी हत्या है मातृशक्ति का नाश करना। आप ध्यान देकर मेरी बात सुने, आप कहते हैं स्वामी जी जानते नहीं, तो मेरे को पहले आपने मूर्ख बता दिया, मेरी बात कैसे जचेगी आप गए? कोई पागल कहे तो हमारी जचेगी बात? तो पहले मेरे को शांति दे नहीं, अनजान मूर्ख, तो मेरे को पहले आपने मान लिया, बात मेरी कैसे चलेगी कि स्वामी जी समझते नहीं। परिवार में बच्चों को तो पालना हमारे हमें करना पड़ता है, स्वामी जी थोड़े पालन करेंगे। अनकहने में क्या जोर आया, स्वामी जी समझते तो है नहीं, क्योंकि बाल नहीं बच्चा नहीं छोरा नहीं छोरी नहीं, कैसे समझाइए। हमारे उस पालन करना पड़ता है तो गर्म गिरा दे पर सिला ठीक तरह से तो गिरा रहो क्यों शीतला रहो पहले ही भजन करो। अगर आपको गर्म गिरा तो हत्या क्यों करो, भजन करो उसमें बैठ करके बस, कोई जरूरत नहीं स्त्री को पुरुष की पुरुष भजनी कोई जरूरत नहीं है, भजन करेंगे तो आप रास्ता ठीक बैठ जाए। अब पहले पाप करो फिर पाप करो फिर पाप का ही पाप करो, क्यों क्यों करो बताओ। स्वामी जी समझते नहीं, आप समझाओ सर, मैं समझने तैयार हूं, एकांत में समझा देना मेरे को। मैं समझ में आने पर मैं आपके साथ धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। मेरे समझ में आ जाएगी तो वैसे कहने लग जाऊंगा, मैं तो बचा शब्द नहीं सब वही कहूं। और मेरे विचार में जो आपके मेरे संसार के हित दिखे वो बात कहता हूं मैं, मेरी समझ में भूल हो सकती है बेसमझी हो सकती है तो वो आप समझा दिया करो। माता पिता दोनों में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, पूजनीय माता होती है। विद्यार्थी को पढ़ाकर घर पर भेजते हैं तो पहली बात होती है मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव, अर्थ हुआ कि माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य गुरु है उनको परमात्मा का स्वरूप समझो, घर पर कोई अतिथि आ जाए तो उसको परमात्मा का स्वरूप समझो। ये बात दे करके और विद्यालय से गुरु विद्या करते है बेटा अब जाओ तुम पढ़ के अब जाओ, तो उसे सबसे पहला मातृदेव होकर लिखा है, सबसे पहला मातृ साक्षात। वो मातृशक्ति गर्भ में आते आप नाश कर देते हो, कितने हत्यारे हो आप। जिस माँ की इतनी महिमा करी उसको पैदा ही नहीं होने देना, गर्भ में आ जाए तो गिरा देना, पैदा ही नहीं होने देना, महान हत्या करते हो। इस बार मैं कहता हूं मेरे को उस घर का अन्न मत देना, कितनी हत्या है लड़के की। जो गर्भ में गिरा तो लड़के की इतनी हत्या नहीं है जितनी लड़की की हत्या है, बड़ी भयंकर। उसमें कितने लड़के पैदा होंगे, आप हम सब मातृशक्ति से आए हैं, पिता के द्वारा आए हैं, हम माँ के द्वारा पले हैं बाप के द्वारा पले हैं, हम साधुओं को रोटी माताओं को मिलती है पिताओं से मिलती है। आपके घर में भी जाते हो काम धंधा करके तो शरण किसकी लेते हो, माँ की लेते हो, बहन की लेते हो, स्त्री की शरण लेते हो, निश्चिंत हो जाते हो, खाना पीना सब पर फगा दिया। ये आपका पालन पोषण करने वाली शक्ति है, उसको गर्भ में आते ही नष्ट कर देते हो। क्या स्वामी जी समझे नहीं, आप समझाओ सा, दूसरी बात बताओ आप, कितनी पाप की बात है। कहते दहेज देना पड़ता है तो दहेज देना पड़ता है कि आपको लेते हो, आप देना नहीं पड़ता है लेना छोड़ दो आप। हमें लड़के का दहेज नहीं लाएंगे, अगर लड़के का लेना नहीं लाएंगे तो लड़कियों को क्यों मारी जाएगी, वो हत्या महान पाप लगेगा जो दहेज चाहते हैं। क्यों बाको फाटेगा लाओ मारे दो मार, डाकी डाकी चलो सूझ डाकी चलो डाकी खाऊ खाऊ खाऊ, वो छोड़ दो थे कहीं ठीक नहीं आज हो जाएगा, दुनिया भी भला हो जाएगा। आप इतनी बैठी और इतने भाई बैठे, ये अगर विचार कर ले कि हम दहेज नहीं मांगेंगे, कुमकुम कन्या अच्छी कन्या हो, कुमकुम कन्या रोली मोली कुम कन्या बस ब्याह हो जाएगा, कितना काम होगा, कितनी समाज सुधरेगा। अब दहेज देना पड़ता है, लड़की को मार दो, मातृ हत्या करते हो, मातृशक्ति है। मैंने लेख लिखा है कि मातृशक्ति का महान अपमान घोर अपमान कर रहे हो आप, बताओ इसमें घोर अपमान नहीं है क्या, आप बताओ, कोई खड़ा हो बता दे मेरे को बताओ। अभी लड़का लड़का की गणना करी तो उस गणना में 300 छोरों में 200 छोरी है, 300 छोरों में 200 छोरी है। तो 200 का ब्याह होगा, एक छोरा तो कुंवारा ही रहेगा, वो कितनी हत्या हुई आपकी, कितना वंश नष्ट हुआ। 3000 छोरों में 2000 छोरी, कहते हैं कुछ वर्षों के बाद 4000 छोरों में 2000 छोरियां रहेगी। तो 2000 के बाद 2000 ब्याह नहीं होगा, वंश नष्ट हो जाएगा बाबा, वंश नष्ट हो जाएगा। सब पापिष्ट तमो लोके यह कुर्यात कुल नाशनम, जो कुल का नाश होता है वो महान पापी है। या अर्जुन घबराए, इससे कुल नाश हो जाएगा महाराज, युद्ध करने से कुल का नाश हो जाएगा। वो तो डरता है कुल नाश से, कर्तव्य से विमुख होता है, युद्ध से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। ऐसे धर्म को जानने वाला भी कहता है कुल का नाश हो जाएगा। अरे आप जान जान के लेकर उठारे पड़े हो पीछे नाश ही नाश करने के लिए। फिर कहते हो मेरो बेकल, बताओ आप समझा दो, अभी समझाओ सभा के बीच में, मेरे समझ में आ जाएगी, कान पकड़ मान लूंगा, मेरे को लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है, मान लूंगा मैं। कितना अनर्थ होगा, गणना करके शहर में और महाराष्ट्र में गणना करके ये बताया है कि 20-25 वर्षों में 4 छोरे रह जाएंगे और 2 छोरी, 2 लाख छोरी, 3 लाख छोरा, 4 लाख हो जाएगा। अभी आया था 2 लाख, 3 लाख छोरी में 2 लाख छोरा है। अब अगाड़ी के 4 लाख, 4 लाख छोरा में 2 लाख छोरी रह गई। छोरियों की घात कर रहे हो आप, मातृशक्ति का नाश कर रहे हो। पराशर स्मृति में लिखा है कि कोई स्त्री का गर्भ गिरा दे तो उनका त्याग कर देना चाहिए, कोई और प्रायश्चित है ही नहीं। माँ लक्ष्मी से बढ़कर आप उसको मानोगे, माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, भगवान हमारे पिता, लक्ष्मी हमारी माँ। वह लक्ष्मी के गर्भ था, उस गर्भ को माँ ने फेंक दिया, जल में पड़ा रहा, वो अंड कटा, ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, अंड कटा, अंडा 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 हुआ वो गर्भ, उसमें ये संपूर्ण सृष्टि पैदा हुई उससे। उसके बाद लक्ष्मी के संतान नहीं हुआ अभी तक, बताओ हुआ तो इधर बताओ, सत्संग सुनते हो, प्यार पुराण सुनते हो, कोई बताओ लड़का हुआ लक्ष्मी जी के। तो गर्भ की रात में रोग ही बैठी बैठी कि मैं छोरा नहीं है, छोरा नहीं है। कैसे नैसे आप छोरा का तो नाश करते हो, गर्भ से गिरा देते हो, छोरा में भूख रहे तो छोरा पैदा होगा आपके, तो कहाँ होगा छोरा फिर, खेड़े लागे खेड़े लटका छोरा कहाँ होगा, रोग ही पीछे। कई हमारे पास बहना आती है स्वामी जी मेरा छोरा नहीं है, मैं कहता भाई मैं ऐसा सिद्ध नहीं जो छोरा दे दू, हमारे पास है नहीं, मैं दे नहीं सकता, मेरे में वो शक्ति नहीं है। क्या कहता हूँ छू मंत्र के, जाओ बेटा तुम्हारा बेटा हो जाएगा, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं, कैसे दे दू। बड़ी आतुर है, बड़ा दुखी होते हैं, क्या करें। अरे आप गाप गर्भ गिराते हो, महान हत्या कर रहे हो, महान हत्या। अरे बीच में कितनी कूटनीति भरी हुई है मेरे को तो पहले पता नहीं, इस साल ही थोड़ा जब कई महीना हो गया याद नहीं है, एक पता लगा है। विदेशी लोग हिंदुस्तान को कर्जा दे रहे हैं, वो कर्जा इतना बढ़ गया है, हिंदुस्तान के जितने आदमी है उस आदमी के प्रति कितना हजार है भाई है? एक एक आदमी के प्रति 4000 आवे, इतना कर्जा बढ़ा है। हिंदुस्तान में जितने आदमी है, एक एक आदमी के पीछे 4000 रुपयों का कर्जा पड़ा है। वे कर्ज देने वाला लिखाते हैं कि तुम पहली बार नियोज तुम्हें करना पड़ेगा। कारण क्या कि इतना कर्जा हो जाएगा, मनुष्य मर जाएंगे, राज हमारा हो जाएगा। यह है भीतरम गुड़ा संधि, आपका सत्यानाश करके राज करना चाहते हैं। उनसे लिखाते हैं प्रयोजन करना पड़ेगा नियोजन। आपके ख्याल में आई कि नहीं बात, क्या चीज चल रही है, क्या दशा होगी, ये तो मेरे को पहले पता नहीं था, अभी पता लगा एक दो साल में ही। नाश कर रहे आपस, आप उसी में धुन में लगे हुए हो, क्या बताऊं, बताओ कितना नुकसान कर रहे हो आप, कुल का नाश कर रहे हो, वंश का नाश कर रहे हो। तो मेरे को वंश के नाश की, कुल के नाश की चिंता नहीं है, मेरी चिंता अब सुन लो बताऊं। हिंदुओं में जैसे आपने विहंगम मार्ग पूछा, तो दूसरे कल्याण की बात है ही नहीं, गद्दा पर गिरजाघर में जा जाओ, बस नमाज पढ़ो, 5 दिन में नमाज पढ़ लो, कल्याण की बात कहाँ आती है और जगह। वो इतनी सस्ता कल्याण की बात, उस कल्याण के रुकावट दे रही हो, माता हो, डाकण हो, क्या हो, आप खा गई हो, माँ कहा रही आप। राम जी को वनवास में भेज दिया, भरत जी ने केकई को माँ नहीं कहा, तेरे को माँ कैसे कहूं, राम जैसे बेटे को तो जंगल में निकाल दे, अब माँ है तू, माँ कहने लायक नहीं, माँ नहीं कहूंगा। रोती रही केकई के भरत लाल मेरे को माँ कहते, माँ कहते। आप गर्भ गिराओ उनको माँ कहें क्या, सर्पणी है उसका नाम, पुत्रादिनी सर्पणी, सिद्धांत गौनी आता है, सर्पणी होती है 108 अंडा देती है और घेरों घाल करके बीच में रहती है, वे अंडे मासू जो सांप निकले वो खा जाती है, उन अपने बच्चों को खा जाती है सर्पणी। तो जो माँ बेटों को मारती है उसको सर्पणी कहा है। सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण में उदाहरण दिया, पुत्र आदि नहीं सर्पणी, पुत्र कोई खा जाए या पुत्र पुत्री को खा जाती है, ये माँ हुई व्याकरण हुई। बिच्छू कई 108 कितने बच्चे होते हैं, तो मैं बच्चे गिरे नहीं है सुना है, परंतु बिछनी को खा गई है, मैं आंखों से देखा है, गर्भवती बिछुनी वो पड़ी खोखला हो, ऊपर कबल कलबल कबल करते बिच्छू बिच्छू है, माँ के तो नीचे से खोखला रह गया, ऊपर खा गए सब, ये मैंने आंखों से देखा है। तो वे छोरा माँ को खा जाते हैं, अरे सरपणी है जो बेटों को खा जाती है, तो सांप और बिच्छू से हुई आपकी, कितना अनर्थ कर रही हो अब आप, थोड़ी सी समझ गए ऐसे के 10 रुपया रुपयों का तत्व स्वामी जी समझते ही नहीं। मैंने रुपये लिए हैं, भेंटा ली है, कथाएं की है, कथाओं भेंट चढ़ाई है, भेंट ली है, क्या लिया है मैंने रखा है, तो मैं कहता हूं तूने दूना समझता हूं, रुपया मैंने रखा है, रुपया छोड़ दिया आपको, रखना छोड़ते, छोड़ना नहीं आता है आपको, मेरे को आता है, तो मैं दूना समझता हूं, समझता कैसे नहीं, रुपये नहीं लिए हो तो बात अलग है, मेरे ज्यादा रुपये नहीं हुए, ये बात ठीक है, हमारी कथा में 100 रुपये भेंट आते थे, कितने वर्षों 74-75-76 चौहत्तर सम्मत 1974-75 की बात है भाई, कितने वर्ष हो गए, 76 वर्ष हो गए, उसमें 100 रुपया कितना होता था, आज कितने होते हैं 100 रुपयों में। तो कहते हैं स्वामी जी भेंट अच्छी आई, सुख जाती है, तो 40-50-60 रुपये आते थे, हमारे 100 रुपये आते थे, जानता कैसे मैं नहीं हूं, हम माता बहनों फिर उत्साह करती महाराज, फिर इकट्ठा करके फिर रुपया देती, चीजें देती, कपड़ा देती, नारे ला जाते कई रुपयों में। मैं गण कर रखता था चित्र बांध करके, तो जानता कैसे नहीं हुए। तुम्हारा लोभ है, मेरा लोभ नहीं था क्या? मेरी भी था। अपनी अपनी जगह है, आप दुकानों में करते हो, हम कथा में करते। दुकान न्यारी न्यारी है अपनी अपनी, व्यापार अलग अलग है। तो व्याख्यान भी दिया है, कथाएं भी की है, परंतु व्याख्यान से गाना बजाना तबला पेटी से इससे मैं धाप गया है। खूब तरह से पीछे बजा करके मैंने गाना किया है, अकेले रात रात जागरण किया, कभी कभी अकेले एक पेटी मेरे पास अकेले ऐसा किया है, व्याख्यान दिया है, कथाएं की है, भेड़ ली है, पूजा कराई है, ये सब करवाया है, देखा है। इनसे सबसे धाप गया मैं। तब सेठ जी के पास आया, सेठ जी ने कहा व्याख्यान दो, सेठ जी मैं व्याख्यान धाप कर आया हूँ। लोग समझे सेठ जी द्वारा कुछ क्या है, पर सेठ जी कह जो करना पड़े जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सेठ जी का व्याख्यान दो। सेठ जी ने सिखाया व्याख्यान देना, आप प्रवृत्ति करी है, मेरा धापा हो गया, धाप गया मैं, व्याख्यान वाले को देना अपने परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है। तो इस बार से पैसों को भी मैं जानता हूँ, कुटुंब परिवार है, तेला तेली भी मैंने किया है, तुम्हारे बेटे बेटी हमारे चेला तेली है, पर क्या है, पर तो मैंने देखा कि इसमें भाई कल्याण नहीं, लाभ नहीं है, तो उससे मेरा मन हट गया। आप जो छोरियों को मारते ही जाते हो, आपके कभी मारने से भी तृप्ति नहीं होती। एक बहन मिली थी, भिक्षा कैसे कहूं मैं, तीन चार बार गर्भ गिरा दिया, बारह में दो तीन गर्भ एक ली गिराया, उसने कहा कैसे कहूं आप भिक्षा को, तो इतनी पीछे क्यों पड़ी हो बताओ आप। आपकी समझ से मैं नहीं जानता हूं, परंतु मेरी समझ में नहीं जानता हूं ऐसा नहीं मानता हूं, मेरे समझने का अभिमान है, मैं भी जानता हूं। आप कहता हूं आप कृपा को अंदाता, आप अंदाता हो, आपके द्वारा ही पलता हूं मैं, मेरे पास जयराम जी है क्या, भूख लगे तो आप ही देते हो सर, आप अंदाता हो, अंदाता मानो। पर अरे घर रे छोरे की बात मानती होगी नहीं तुम, तो तुम्हारे घर का ही तो छोरा हूं, और कहां से आया बताओ, कोई बहन बता सकती है कि मैं ऊपर से आ गया? आप लोगों से तो जन्मे हैं, आप लोगों से पले हैं, आप लोगों का दूध पिया है, आप लोगों की गोदी में हमें प्यार पाया है आप लोगों का, बोलो है कोई ऐसा बहन भाई जो माँ के बिना आ गया, माँ के बिना पल गया, माँ का प्यार नहीं मिला? कोई मर जा तो बात न्यारी है, माँ मर जाए क्या प्यार किसे मिले। तो आप लोगों का, आप लोगों से जन्म पाया, आप लोगों का दूध पिया, आप लोगों से प्यार पाया, आप लोगों से पाया ही नहीं पा ही रहा हूं, आज भी रोटी आप लोगों से मिलती है, इस वास्ते जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, तो हिंदू जन्म में जन्मे तो उनका कल्याण होगा, वो कल्याण से आप वंचित कर लेती हो, जन्म नहीं देती, अरे यहां जन्म नहीं देने देती हो तो वे ईसाइयों में मुसलमानों में जन्मेंगे, आप तो बंद कर देते हो, मनुष्य तो जन्मना पड़ेगा मनुष्य, उनको कौरवों की और पांडवों की नौ अक्षौणी सेना थी, दुर्योधन ने तो भगवान की शल्य की दो अक्षौणी सेना ले ली, क्या हुआ उन्हें कितना फर्क पड़ गया, उनकी तो ग्यारह अक्षौणी होगी, सात अक्षौणी होगी, ऐसे छोरा छोरी था हजार उठी जन्म में, हमारी कितनी संख्या रहा, आपकी कितनी संख्या हो गई, अरे फौज में भर्ती कौन होगा, जो ज्यादा संख्या वाले फौज में भर्ती होगा, आज कहीं रक्षा करने जाओ तो राजपूत है ज्यादा नहीं, हिंदू है ज्यादा फौज में, अरे वे हो जाएंगे भाई, अरे शस्त्र वस्त्र हाथ में, हाँ के रक्षा भर जाओगे ठीक है, क्या दशा होगी आपकी, अरे दो आदमी में साधु कौन बनेगा, अरे फौज में कौन जाएगा, अरे खेती कौन करेगा? कहते हैं ज्यादा आदमी होने से भूखा मर जाओगे, अरे ज्यादा होने से तो खेती करोगे। और मैं भी तो आप लोगों से आया हूँ, जैसे आप लोगों से कोई निकल गया वैसा भी, तो आप लोग अच्छा समझते हो, कौन साधु बनेगा बताओ? घर में छोरा कमती कौन बनेगा? कितना घाटा आपके हो जाएगा, तो आप मानते ही नहीं, क्या करूं बताओ। एक मैन ने कहा कि बीकानेर अस्पताल में जाकर देखा जाए तो ये नर्स बने, ये गर्भाने वाली स्त्रियां ज्यादा मिलेगी और ऑपरेशन करने वाली स्त्रियां ज्यादा मिलेगी। एक समाचार मिला सैकड़ा स्त्रियां आती है गर्भ गिराने वाली एक एक दुकान पर। हजारों देखो अब अरे हमारे सत्संग करने वाली मानते नहीं। उस समय ने क्या ज्यादा स्त्रियां सत्संग करने वाली होती है वहां पर गर्भ गिराने वाली। अस्पताल में दो स्त्रियां गई गर्भवती, उनके बालक बना, एक धनवती थी एक गरीब थी। यहाँ बीकानेर की बात है, ये मेरे सामने आई है। एक गरीब थी एक धनवती थी। गरीब थी उसके हो गया छोरा और धनवती उनकी छोरी। नर्स को कहा, नर्स ने बदल दिया, छोरा तो लाकर दे दिया धनवती के घर में, छोरी दे दी उनकी गरीब के घर में। फिर उस नर्स को कई बर्तन और कई चीजें बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया देने लोगों के, क्यों दे रही है इतना इशू क्यों दे रही है? कैसे बेटा दिया है बदल दिया, ये पिकंदरी बात है यहाँ की। कहता नर्स को क्यों दे रही है कि नर्स ने बेटा दे दिया है, बेटा ये अनर्थ आपके हो रहे हैं। अरे वो बेटा आपको निहाल करेगा, ये आपके बहम है। घर का जाए और आज माने को नहीं, अब वो बेटा आपकी मानेगा सेवा करेगा, पर बहम है क्या करें? कितने छोरा छोरी कपूत हो रहे हैं, कितने छोरे ऐसे निकमे हो रहे हैं, ब्याह करने वाली अपनी स्त्री को त्याग कर देते हैं, दुख देते हैं, मारपीट करते हैं। मेरे सामने आती कल आई मेरे पास भाइयों, मैं कहा छोरिया थे भगवान को याद करो भाई, भगवान को याद करो और क्या। मेरे को पूछे हम क्या करें, ससुराल वाले बाबा करते नहीं, सास हमारी मानते नहीं, पति हमारे को मारपीट करता है, कहां जावें? कल ही बात है, आप बताओ कोई उपाय? छोरियों को तो वर मिलता नहीं है, अरे विधवा ब्याह करो, एक नई बात लो। कुमारी को तो वर मिले नहीं, अरे विधवा लोग लगी करो, फिर क्या दशा होगी? ऊंधे ऊंधे चलते हैं, ऊंधे ऊंधी खोपड़ी ऊंधी हुई है। धनकल्पुग महाराज आपने लीला हजम दिखाई है, धर्म गया पाताल सब बेधर्मी छाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में, दोष सब्जी उल्टा ही उठा हो रही है। विधवा लग गई चौपान चावल ने देश में मुस्काई है, नित करती श्रृंगार देकर स्वागत विश्र में ही है। धनकल्पुग महाराज आपने लीला हजम दिखाई है, तो कर जो में कृपा करो, क्या करो? नारायण नारायण नारायण। अब शंका करो मेरी बातों पर, शंका करो। एक प्रजा आया था कि अन्न कहाँ खाएंगे, तो मुसलमान तो अन्न खाते ही नहीं, 60 साल के तबेटी होते हैं, ईसाई का अन्न खाते ही नहीं, अन्न हिंदू हिंदू खाते हैं। सस्ती आपकी बात, वो बातें सुनी हुई सिनेमा में देखी हुई, ऐसी मथे में ठस गई और इसको समाज का एक अंग मान लिया। ये तो समाज का एक अंग है, संतान का नाश करना समाज का अंग है, समाज का नाश भी ये सभ्यता का अंग है, समाज में भी सभ्यता का अंग। समाज राम जी की हो जाएगी समाज कहाँ रहेगा? जो स्वराज बनी न होंगे तो क्या वो समाज रहेगा? ये सभ्यता का अंग है। और नहीं करावा जिसको कहते हैं असभ्य आदमी है, बेअकल आदमी है, जो गर्भ नहीं गिरावे नसबंदी नहीं करे, ऑपरेशन नहीं करावे, वे असभ्य है। ये दशा हो रही है।